नमस्कार भारत, रविवार 26 जून, मैं हूं निखिल रंजन। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी हमले पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त बोले, कश्मीर मसले का हल होना जरूरी।
जम्मू और कश्मीर का जो मसला है, एक तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और दोनों ममालिक इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक इशू है जिसे मुज़ाकरात के जरिए हल होना है।
उत्तर प्रदेश में बीएसपी से बाहर गए स्वामी प्रसाद और मायावती में चल रही है जुबानी जंग। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने पर क्या जर्मनी को बहुत नुकसान होगा? कोलोन में भारतीय पत्रकार राम यादव।
कुल मिलाकर जर्मनी को कोई विशेष चिंता नहीं है, उसका कोई विशेष कारण भी नहीं है। फिलहाल जो बहुत कुछ कहा जा रहा है उसमें सिर्फ यही है कि व्यापार पर थोड़ा असर पड़ सकता है।
कल से शुरू होगा टेनिस का सबसे बड़ा मुकाबला विंबलडन। होंगी अखबारों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। गुरुवार को हुए जनमत संग्रह के बाद यूरोप में राजनीतिक हलचल जारी है। ब्रिटेन कब और कैसे यूरोप से अलग होने का औपचारिक प्रस्ताव दे, इस बात पर चर्चाएं हो रही हैं। यूरोपीय संघ ने स्पष्ट किया है कि इस बारे में बातचीत शुरू होने से पहले ब्रिटेन को औपचारिक प्रस्ताव देना होगा। वहीं ब्रितानी नेताओं का कहना है कि वो अलग होने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले वक्त लेना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं का कहना है कि इस बारे में देरी आगे बढ़ने के प्रयासों में रुकावट होगी। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्कल ने कहा है कि प्रक्रिया में लंबा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्ता कठोर नहीं होनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ब्रिटेन के फैसले पर चर्चा के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट पार्टी की नेता मरीन लेपेन ने कहा है कि ओलांद यूरोपीय संघ के से लोगों के असंतोष को समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति निकोला सरकोजी ने कहा कि अब यूरोपीय संघ को नए समझौते की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रपति ओलांद से कहा है कि ये जरूरी है कि मजबूत कदम उठाए जाएं और फ्रांस सरकारों के बीच नए समझौते की बुनियाद रखे, ताकि यूरोप के लोग ये समझ पाएं कि उनकी बात सुनी जा रही है। कुछ ब्रितानी नागरिक जनमत संग्रह के नतीजों को रद्द करने के तरीके सुझा रहे हैं। लेबर पार्टी के सांसद डेविड लेमी ने कहा है कि संसद को इस पागलपन को रोकना चाहिए और कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी जनमत संग्रह को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर दोबारा जनमत संग्रह कराने की मांग करने वाली याचिका को 25 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है। राष्ट्रपति ओबामा ने वेस्ट वर्जीनिया में बाढ़ की को आपदा घोषित कर दिया है। इसमें अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं। प्रांतीय गवर्नर अर्ल रे टॉम्बलिन के आग्रह पर ओबामा ने 3 सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों के लिए संघीय मदद भेजने का ऐलान किया है। यहाँ अब भी 30,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ऊर्जा कंपनी ट्रांस कनाडा ने कीस्टोन पाइपलाइन परियोजना रद्द किए जाने के कारण हुए नुकसान के बदले अमरीकी सरकार से $15 अरब का हर्जाना मांगा है। राष्ट्रपति ओबामा ने इस पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी नहीं दी थी। ट्रांस कनाडा ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि उसने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परियोजना के तहत कनाडा और अमरीका की पाइपलाइन नेटवर्क को जोड़ा जाना था और इसका मकसद मैक्सिको की खाड़ी तक कच्चा तेल पहुंचाना था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं निखिल रंजन। बीती रात भारत प्रशासित कश्मीर के लिए बेचैनी भरी थी। कल वहां फिर एक चरमपंथी हमला हुआ। केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 8 जवानों की चरमपंथियों के इस हमले में मौत हो गई, जबकि 20 दूसरे घायल हो गए। फायरिंग रेंज से लौटते वक्त चरमपंथियों ने सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दोनों हमलावरों की भी मौत हो गई। पाकिस्तानी चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से जब इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनके जवाब ने बहुत से लोगों को हैरान किया। पूरा ब्यौरा सुनिए अशोक कुमार से।
चरमपंथियों ने अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के एक बस को निशाना बनाया। अधिकारियों का कहना है कि हमला उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ के जवान फायरिंग रेंज से अभ्यास करके वापस लौट रहे थे। तभी कार से उतरे चरमपंथियों ने हमला किया। हमला श्रीनगर से दक्षिण में लगभग 15 किलोमीटर दूर पंपोर में हुआ। सीआरपीएफ के आईजी नलिन प्रभात से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या हमले की वजह सुरक्षा में कोई चूक थी, तो उन्होंने कहा,
जनाब अगर सिक्योरिटी के लैप्स होते तो ये टेररिस्ट भाग गए होते, जो कि अक्सर हमले के बाद होता है कि जो दहशत पसंद होते हैं भाग जाते हैं। आज इनको भागने का मौका नहीं दिया गया है और इन पाकिस्तानियों को मौके पे ही मार गिराया गया है, तो यू रियली कैन नॉट से देयर इज अ लैप्स।
सीआरपीएफ के महानिदेशक ने हमले के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी है और वो खुद आज पंपोर का दौरा करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है, जबकि घायलों के जल्द अच्छा होने की कामना की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा,
डीजी साहब और उसके साथ में सीनियर ऑफिशियल्स श्रीनगर जा रहे हैं और उसका कार्रवाई क्या करना है वो निर्णय होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत क्षति की बात है कि इतने लोगों का शहीद हुआ एक साथ।
हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन लश्करे तैयबा ने ली है। संगठन के प्रवक्ता अब्दुल्ला गजनवी ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि कश्मीर की आजादी तक सशस्त्र आंदोलन जारी रहेगा। उधर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित कल इस हमले पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। एक इफ्तार पार्टी में जब पत्रकारों ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा,
देखिए मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर का जो मसला है एक तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और दोनों ममालिक इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक इशू है जिसे मुज़ाकरात के जरिए हल होना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वक्त आएगा जब दोनों ममालिक मिल बैठेंगे और इस मसले का हल तलाश करेंगे। मैं मजीद और इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने जो बात कहनी थी मैंने कह दी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इफ्तार पार्टी है, लेट्स हैव यू नो इफ्तार पार्टी एंड एंजॉय आवरसेल्व्स।
भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बहाली के रास्ते में जो मुद्दे आड़े आ रहे हैं, कश्मीर उनमें से एक है। पाकिस्तान जहां बातचीत में कश्मीर मुद्दे को प्रमुखता दिए जाने की मांग करता है, वहीं भारत की मांग है कि सीमा पार से भारत में चरमपंथ को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि कुछ ताकतें कश्मीर में शांति को भंग करना चाहती हैं। कल के हमले के बाद घाटी में चौकसी बढ़ा दी गई है।
रिपोर्ट सुना रहे थे अशोक कुमार। कश्मीर में सीआरपीएफ पर कल ऐसे दिन हमला हुआ जब राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग सीट से विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की। महबूबा मुफ्ती पीडीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। मैंने श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से पूछा कि क्या बीजेपी पीडीपी सरकार के सत्ता में आने पर ये हमले ज्यादा तेज हुए हैं।
जी देखें, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो भी वजह हो वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो इंटरनल सिचुएशन है उसमें काफी एंगर पहले से ही था जब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की या यूपीए की सरकार थी। जो एंगर लगता था कि पीडीपी के सरकार में आने से हल्का सा थम जाएगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला बहुत ही अलोकप्रिय पॉलिटिशियन बन गए थे और लोग उनको जिम्मेदार समझते थे इस सारी स्थिति के लिए। लेकिन जब पीडीपी की सरकार आई तो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा कि उन्हें इसलिए वोट दिया जाए ताकि वो बीजेपी को कश्मीर से दूर रखे, लेकिन बाद में ऐसी सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन हो गया कि उनको बीजेपी के साथ नाता जोड़ना पड़ा। तो इस तरह से जितनी भी यहाँ पे भारत का समर्थन करने वाली पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके विरुद्ध एक तरह से एक एंगर है युवा पीढ़ी में। तो इसके साथ साथ जो साउथ कश्मीर है, एक नया फिनोमिनन चला कि जो उच्च शिक्षा वाले युवा हैं उनको लश्कर तैयबा में देखा गया कि वो जा रहे हैं या हिजबुल मुजाहिदीन में जा रहे हैं। एक लोकल कमांडर बुरहान नाम से साउथ कश्मीर में एक्टिव है, उन्होंने वीडियो भी रिलीज की हैं, पिक्चर्स भी अपलोड किया, हालांकि उनके साथियों में से कई को जो कई झड़पों में मारा गया, लेकिन ये एक नया एक न्यू वेव ऑफ मिलिटेंसी के तौर पे ये चला। इसमें इस तरह से हमलों का पैटर्न पिछले 26 साल में नहीं था कि दो लड़के आते हैं पिस्टल से फायर करके दो सुरक्षा कर्मियों को मार देते हैं, उसके बाद उनका हथियार भी छीन लेते हैं। हथियार छीनने की जिनको ये राइफल स्नैचिंग अटैक्स कहते हैं, वैसी कम से कम एक दर्जन घटनाएं घटी हैं जब से ये नई सरकार बनी है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन गया है साउथ कश्मीर।
लश्करे तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो क्या उनकी वास्तव में कोई भूमिका देख रहे हैं आप, या ये जो सिर्फ उनका वैचारिक सपोर्ट है या जो एक घटना को अपने साथ जोड़ लेने की उनकी पहल?
घटना कल घटी है उसमें तो सीधे सीधे जो सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल है नलीन प्रभात, उन्होंने तो साफ कह दिया अपने इंटेलिजेंस इनपुट्स के माध्यम से, कहा कि ये तो लश्कर तैयबा की कार्रवाई, और लश्कर जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं जब उनका विश्लेषण आता है या लश्कर तैयबा के दावे सामने आते हैं तो इन सबको मिलाकर ऐसा लगता है, क्योंकि ये सारी तो अंडरग्राउंड एक्टिविटी है, इसमें तो वास्तव से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसीज का एनालिसिस है और जो लश्कर तैयबा के दावे हैं उनको सामने रखकर ये कहा जा सकता है कि लश्कर तैयबा एक एक्टिव फैक्टर है कश्मीर में, और जाहिर है उनके बयानात आते रहते हैं, और कल भी जो है लश्कर तैयबा के प्रवक्ता डॉक्टर गजनवी ने सीधे सीधे इसका क्लेम किया कि इस हमले को जो कल हुआ है, और साथ ही कहा कि ये हमले कश्मीर की समस्या का समाधान होने तक जारी रहेंगे, तो सीधे सीधे लगता है कि ये एक फैक्टर है कश्मीर में, और जब भी देखा जाता है खास तौर से दक्षिण कश्मीर में ये फिनोमेना देखा गया है कि जब भी एनकाउंटर्स होते हैं तो चरमपंथियों के सपोर्ट में लोग जो है बाहर आते हैं और पुलिस से भिड़ जाते हैं, और पुलिस को काफी कई घंटों तक ये काम करना पड़ता है कि भीड़ को जो है एनकाउंटर की साइड से दूर ले जाना पड़ता है, उसमें आंसू गैस का इस्तेमाल होता है, लाठीचार्ज होता है, कई लोग घायल भी हो जाते हैं।
श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और कश्मीर के बाद अब आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म होती जा रही है। एक ओर बीएसपी नेता मायावती और मौर्य के बीच वाक युद्ध चल रहा है, तो दूसरी ओर मौर्य के अगले कदम की ओर लोगों की निगाहें लगी हैं। राजनीति के पंडित कयास लगाने में जुटे हैं और मान रहे हैं कि मौर्य अपने भविष्य का फैसला 1 जुलाई को बुलाई गई बैठक और फिर उसमें मिलने वाले समर्थन के आधार पर ही तय करेंगे। वहां और क्या हो रहा है, सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
स्वामी प्रसाद मौर्य का बीएसपी से नाता तोड़ना उतना हैरान करने वाला नहीं था जितना उसके बाद उनकी राजनीतिक जगह तलाशने की कवायद। पहले ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी में उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक दिन बाद ही ये कयास हवा हो गए। वहीं उनके भाजपा के अलावा कांग्रेस पार्टी तक में जाने की अटकलें लगातार लग रही हैं। इस बीच बीएसपी नेता मायावती ने शनिवार को एक बार फिर मौर्य पर निशाना साधा और उन्हें एक तरह से चेतावनी भी दी
कि बहुजन समाज पार्टी को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे स्वार्थी व गद्दार लोग जैसे अनेकों या जो भी लोग समय समय पर बीएसपी को छोड़कर गए हैं, तो वो अकेले गए हैं, उनके साथ उनका समाज नहीं गया। और इतना ही नहीं तो कुछ समय के बाद अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जो लोग भी बीएसपी को छोड़कर गए तो वो खत्म हो गए, नजर नहीं आए।
मायावती ने लखनऊ में विधायकों के साथ बैठक की और उसके बाद गया चरण दिनकर को बसपा विधानमंडल दल का नया नेता चुना गया। वहीं स्वामी मौर्य कुछ दिन पहले तक जिस तन्मयता से मायावती की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, अब उन्हें कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।
जो उनका आचरण है जगजाहिर, सम्मानजनक, उन्होंने न बोलना कभी सीखा है न किसी को सम्मान देना जानती। सारे कार्यकर्ता से लेकर के विधायक सांसद पदाधिकारियों तक को उन्होंने अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया है। वो इतनी घबराई हुई है कि उन्होंने निकाले गए विधायकों को भी विनती करके बुलवाया, उनकी निष्कासन रद्द कर वापसी की, उनका कटा हुआ टिकट वापस किया, यहाँ तक कि जिनसे जो उनसे पैसा ली थी वो भी वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ही स्टैंड है जिसके नाते सुश्री मायावती जी को आज घुटना टेकना पड़ा है।
इस बीच मौर्य ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। वो दिल्ली में भाजपा नेता ओम माथुर से मिले तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के साथ भी देखे गए। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि मौर्य के जाने से बीएसपी को नुकसान होगा या फिर उन्हें। वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र त्रिपाठी कहते हैं,
चूंकि समाजवादी पार्टी के रास्ते बंद हो गए, भारतीय जनता पार्टी टच में है ही, लेकिन वहाँ पहले मौर्य बैठा हुआ है, अभी तक उनके साथ पिछड़ा कितना था अब देखने वाली बात है कि मौर्य जी के साथ था कि बसपा के साथ था। अगर ये नहीं ला पाते हैं तो इन्हें अपने वजूद के लिए ही संघर्ष करना पड़ जाएगा।
जानकार ये भी कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक स्थिति और भविष्य को भांप कर ही किसी अन्य दल में जाएंगे, अन्यथा वो खुद की भी पार्टी बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आगामी 1 जुलाई के बाद ही तय होंगी, जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक बुलाई है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और आगे बढ़ने से पहले आइए जरा नज़र डालते हैं अखबारों पर। दिलनवाज पाशा अखबारों के साथ स्टूडियो में हाजिर हैं। जी दिलनवाज, बताइए कि आज क्या कुछ छपा है इसमें।
जी, आज दिल्ली से प्रकाशित अखबारों में 2 खबरें प्रमुखता से छाई हुई हैं। एक, कल भारत प्रशासित कश्मीर में जो CRPF के जवानों पर चरमपंथी हमला हुआ, उसमें 8 लोगों की मौत हुई है। और दूसरा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक को प्रेस कॉन्फ्रेंस से गिरफ्तार कर लिया। जनसत्ता लिखता है, CRPF की बस पर हुए आतंकी हमले में 8 जवान शहीद। वहीं इसी खबर पर दूसरी विधायक की गिरफ्तारी पर नवभारत टाइम्स लिखता है, कॉन्फ्रेंस के बीच से ही MLA गिरफ्तार। और अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद
क्या आरोप क्या है इन पर, MLA
जिन पर एक महिला से बदसलूकी का आरोप है। आरोप है कि इन्होंने किसी महिला को थप्पड़ मारा और पुलिस इनको गिरफ्तार करके लेगी। इस पर प्रतिक्रिया में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात,
आपातकाल की बात कर रहे हैं
जी। संयोगवश कल इंदिरा गांधी ने जो भारत में आपातकाल लगाया था, उसकी कल जो है तिथि भी थी, उसी दिन लगाया था। अच्छा, एक और खबर है हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर, दुती चंद आपको याद होगा, एक बहुत मशहूर भारतीय धावक हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए चुनी गई हैं। और हिंदुस्तान लिखता है, 36 साल बाद भारत को मिली नई उड़न परी। दुती चंद पर पहले पुरुष होने के आरोप लगे थे और उन्हें काफ़ी मुश्किल वक्त का सामना भी करना पड़ा था। बिहार में टॉपर्स घोटाले में कल रूबी सिंह को गिरफ्तार किया गया। दैनिक भास्कर ने आज अपने विशेष रिपोर्ट दी है, संडे रिपोर्ट में, नकल में टॉपर्स का पूरा,
क्या इन्होंने अपनी टॉप खबर बनाई
जी? नहीं, ये खबर टॉप नहीं है, इन्होंने नकल के पूरा कैसे नकल होती है विश्लेषण किया है और बताया है कि परीक्षा केंद्र से हर 3 किलोमीटर पर तैनात रहता है शिक्षा माफिया का आदमी, और अगर नकल पकड़ने के वाला उड़नदस्ता आ रहा होता है तो रास्ते में गड्ढे भी खोद दिए जाते हैं ताकि, तो पूरा किस तरीके से वो माफिया काम करता
है।
और एक और खबर नकल से जुड़ी है हिंदुस्तान टाइम्स में, अगर अब जो है थीसिस में कॉपी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस पर जो है जेल भी हो सकती है, लीगल ऑफेंस को बनाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का जिक्र करना चाहूंगा, कल भारत को NSG में सदस्यता भले ना मिली हो, लेकिन MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये भी एक विशिष्ट समूह है, इसकी सदस्यता भारत को मिल सकती है और इंडियन एक्सप्रेस ने इसे अपने पहले पन्ने की लीड खबर बनाया है। एक और खबर जो आज अखबारों में है पहले पन्ने पर, वो ब्रेग्जिट को लेकर है। ब्रेग्जिट दुनिया भर में ये चल रहा है, लेकिन द हिंदू लिखता है, अमेरिका ब्रिटेन के अलग होने के फैसले के बाद दुनिया भर के बाजार जो हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और नई दुनिया में हिंदी अखबार में एक रोचक खबर है शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, महाराष्ट्र में एक जज ने कहा है कि स्कूल अगर बच्चे का एडमिशन रखे और अगर वो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं तो वो मुझसे ले ले, लेकिन उसे स्कूल से ना निकाले।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के फैसले पर यूरोप में सियासी गहमा गहमी जारी है। ब्रिटेन में वहाँ जहाँ कुछ लोगों ने यूरोपीय संघ का हिस्से अब बने रहने के लिए ऑनलाइन मुहिम छेड़ी है, वहीं जर्मनी ने कहा है कि ब्रिटेन के फैसले पर बहुत ज़्यादा नागमोह चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी यूरोपीय संघ का सबसे अहम देश है। हमारे साथी अशोक कुमार ने बात की जर्मनी के कोलोन शहर में वरिष्ठ पत्रकार राम यादव से और पूछा कि ब्रिटेन के बाहर जाने पर जर्मनी को आखिर क्या चिंताएं हैं।
औपचारिक तौर पर कुछ भी कहा जाए, कुल मिलाकर जर्मनी को कोई विशेष चिंता नहीं है, उसका कोई विशेष कारण भी नहीं है। फिलहाल जो बहुत कुछ कहा जा रहा है उसमें सिर्फ यही है कि व्यापार पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन मेरा समझना है और यही कारण था कि ब्रिटेन में जनमत जो है धीरे धीरे यूरोपीय संघ के विरुद्ध चला गया। ब्रिटेन में, अमेरिका में और यूरोपीय संघ के कई देशों में इस बीच कहा जा रहा था, और वो गलत नहीं था, कि यूरोपीय संघ जर्मनी का चौथा राइश, चौथा साम्राज्य बन गया है। यानी हिटलर का जो तीसरा साम्राज्य था
जी,
युद्ध तक वो था, उसके बाद तो वो खत्म हो गया। तो यूरोपीय संघ के अस्तित्व से सबसे ज्यादा फायदा जर्मनी को था, उसके बाद फ्रांस को था। ब्रिटेन को इतना कोई विशेष नहीं था, ब्रिटेन की अपनी एक द्वीप मानसिकता पहले भी थी, ब्रिटेन हमेशा कुछ न कुछ रियायतें चाहता था। तो जर्मनी और वगैरह, तो असल में जर्मनी और फ्रांस दोनों ब्रिटेन से इनकी नाक में दम था। ये इस समय ये कुछ भी कहें, इसलिए भी ये कुछ कहेंगे क्योंकि ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण देश है, परमाणु शक्ति है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य है, वो अलग हो जाता है तो उसकी वजह से दूसरे बहुत से जो छुटभैये हैं जैसे चेक गणराज्य है, हंगरी है, एक आध और ऐसे देश हो सकते हैं, वो भी अलग होने की बात कर सकते हैं।
यादव जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जब से जनमत संग्रह में अलग होने का फैसला जनता ने सुनाया है ब्रिटेन की, तब से एकदम जो हलचल है ब्रिटेन में तेज हो गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें पछतावा हो रहा है, ऑनलाइन मुहिम भी चल रही है कि एक दूसरा जनमत संग्रह कराया जाए। जब ये इतना कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है तो ये ब्रिटेन में इस तरह की चिंताएं क्यों दिख रही हैं?
चिंताएं इसलिए दिख रही हैं क्योंकि इस बीच में कहा जा रहा, हालांकि मेरी ये समझ में नहीं आता कि उसको किस तरह से पुष्ट किया जाएगा, कि पुरानी पीढ़ी ने वोट दिया है यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए। जो नई पीढ़ी है, जो यूरोपीय संघ में आने जाने का जिसको अनुभव है, जो यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी धंधे कर रहे हैं या बाद में कर सकते हैं, ये वो इससे दुखी हैं। और शायद उनका आरोप है कि पुरानी पीढ़ी ने हमारे ऊपर एक ऐसा फैसला लाद दिया जो हमें बाद में झेलना पड़ेगा।
ब्रिटेन की जनता का जो फैसला है यूरोपीय यूनियन के विस्तार पर या उसके अस्तित्व पर जो बचा है उस पर क्या कुछ असर आप देखते हैं?
थोड़ा बहुत तो विद्रोह जैसा होगा, कुछ दूसरे देश भी अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिला के यूरोपीय संघ पे बहुत बड़ा संकट मैं नहीं देखता। वो इसलिए कि यूरोपीय संघ में अब केवल दो ही बड़े देश रह गए हैं, बड़े देश से मतलब है जनसंख्या वाले। जर्मनी है सवा 8 करोड़ जनसंख्या का, फ्रांस है करीब 7 करोड़ जनसंख्या का, ब्रिटेन की 6.5 करोड़ के आसपास थी, वो अब एक तरह से निकल जाएगा। बाकी देश इतने छोटे छोटे हैं कि वो बिना यूरोपीय संघ के बहुत कुछ यूरोप में कर नहीं सकते। भविष्य जिस तरह से हो रहा है, समस्याएं जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, तो उनको नाटो की और यूरोपीय संघ की जरूरत है अपनी सुरक्षा के लिए।
जर्मनी के कोलोन शहर में भारतीय पत्रकार राम यादव से बात कर रहे थे अशोक कुमार।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी रेडियो है और आप नमस्कार भारत सुन रहे हैं निखिल रंजन से। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। कल उनकी मुलाकात दो ऐसे किसानों से हुई जिन पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में शामिल होने के आरोप हैं। ये दोनों फिलहाल तो जमानत पर रिहा है लेकिन मुकदमे की सुनवाई चल रही है। जुबैर ने उनसे बातचीत कर ये जानना चाहा कि इस इलाके में लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं।
तो टोटल कितने हैं हमारे थे?
6-7
लोग थे। जब बाहर के लोग आके दंगा कर सकते हैं तो आगे भी इसका खतरा हो सकता है?
जब आगे यहाँ ही नहीं,
नहीं यहाँ दंगा तो कोई उम्मीद नहीं झगड़ा होने।
जैसे कि आपने कहा आप तो यहाँ ही नहीं तो झगड़ा काहे को होगा, लेकिन
नहीं आवे वे यहाँ रहे, खूब आवे, सारे लोग काम करे, मजदूरी भी करे,
मजदूरी करने आते हैं
वही लोग,
वही लोग, वही मुसलमान, वही खुद फिर,
लेकिन शाम को चले जाते,
शाम को चले जा, कोई कुछ नहीं कहता उन्हें।
पर ये उनका ना आना आपके गांव के लिए भी अच्छा नहीं है, इमेज के लिए? जो
यहाँ आवे तो अच्छी है, जो यहाँ आवे रहे आगे तो हमें बहुत फायदा है उनका।
आप वेलकम करेंगे उनको?
बिल्कुल करेंगे जी,
दिल से।
हाँ दिल से वेलकम करेंगे।
तो उनको विश्वास दिलाने के लिए कोई कदम उठाने की कोशिश की है या करेंगे?
अब तो वे गए, हमारे मकान बन गए, आज हमें यहाँ सुविधा ज्यादा मिली
है।
अब तो इन गए, हम शहर के कस्बे के पास आ गए, हमें सुविधा ज्यादा मिली है, हम क्यों आवे वहाँ? इन्हें पैसा मिला,
पैसा ना मिलता था यही ना आज यही रहते,
पैसा दिया गवर्नमेंट ने चले गए।
अब यहाँ उनका घर बिक पा रहा है कि नहीं?
बिक रहा जी,
बिकन लग रही है।
बाहर के लोग ले रहे हैं,
गाँव के ले रहे जी, मतलब जो सही रेट में दे गाँव के खरीद लो।
आपने खरीदा? तो आप अभी बेल पे रहे हैं आप लोग? आपकी तारीख पड़ती होगी?
हाँ तारीख पड़े,
मुकदमी पड़ रही है।
8-10 दिन की तारीख लगा दे, कभी 15 दिन की, कभी 8-10 दिन की, अपना रोज मारा हुआ। हम अपने बच्चों को पढ़ाए, फैसला करवाई दिए, हमारा बिना मतलब का
दिन का बहुत था, उन्होंने रुपये देकर अपने नाम कटवा लिए, वैसे फंस गए, गरीब शरीफ फंस गए इसमें।
पर आप इन्वॉल्व नहीं थे?
नहीं जी बिल्कुल नहीं,
हम तो गए भी नहीं वहाँ तक,
बिल्कुल नहीं, बाहर था
तो अपने खेत में थे उस टाइम, जिस टाइम यहाँ से काम हो रहा, जब हम खेत से आए उस तुरंत जब यहाँ फोर्स थी खुद।
तो आपके वकील कौन है फिर?
वकील तो अपना आप कर रखे जी हमने।
भाजपा ने मदद नहीं की आपकी?
नहीं मदद करी जी, बहुत बहुत मदद करी, बेल करवाई, लगाते एक आदमी का खर्चा आया 1,00,000 रुपये का कम से कम।
तू क्या नहीं देगा? हिंदू नहीं देने के सबक वोट?
हिंदू कोई नहीं देने का।
पर वो भी तो हिंदू है।
वो यादव हिंदू होता तो वही डाड़वे काम ही नहीं करा था।
गांव
में अगर जो ये जो कड्ढे गए मुसलमान ये सरकार के कड्ढे हुए पब्लिक तो, किन्ने कड्ढे 5-5 लाख रुपए दे दिए उन्हें।
मुख्यमंत्री जी आए हिंदू से मिले भी नहीं,
नहीं मिले
एक पक्ष से मिल के चले गए मोमडन से, हिंदू से तो कोई मतलब ही नहीं मिले भी हो यहाँ
उनका तो मोल करना
था। तो मुख्यमंत्री तो सभी के
है तो सभी के जी, पर उनके वे मन से नहीं मानते तो हम क्या करें उनको।
सबके नहीं कहा सबके होते तो डाल का काम हो नहीं था,
उन्हें वे क्यों आने लगे थी यहाँ फिर तो सरकार की राजनीति के तहत भाग गए यहाँ से, नहीं वे यहीं रहते कहीं नहीं जाते जी, दंगा हो गया था तो यहीं रहते। फिर भी
आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके गांव में रहते हैं और आप उनको पता है कि आप एक मुलजिम है इस पे, ऐसे लोगों से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं?
वे तो मिले जी, मिलने को क्या उन्हें कुछ परेशानी नहीं है मिलने से, मिल तो हम किसी से भी ले, मिलने की कोई दिक्कत नहीं है।
आप मिलना चाहते
हैं किन से जी? मोमडन से हाँ मिलते हैं जी, हम तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं, तो आते जाते हैं बातचीत हो राजी बोल रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर भाई तुमने हमारे नाम क्यों लिए? हमने नहीं लिया था, नाम था तो राजनीति में फंसे वहाँ से। मगर जब हम करने में नहीं थे तुमने हमारे नाम क्यों लिए? मजदूर किस्म के ज़्यादा करते और यहाँ से उनके ज़्यादा ज़्यादा 50-50 हज़ार रुपये के मकान थे, उन्हें वहाँ से 10-10, 20-20 लाख रुपये मिल गए। क्यों लगे
ये सब अफवाह भी तो हो सकती है? 10-10, 20 कोई 5 लाख कहता है, कोई 20 लाख कहता है।
वो तो हमारे
उन्हें तो 15-20 लाख रुपये और नौकरी सरकारी एक आदमी
को,
और जो वैसे हैं उन्हें 5-5 लाख रुपये और 25 हज़ार रुपये जो इनका जक्कत बाड़े हुए उनके मिले और 1 लाख रुपये जो शादी करी उन्हें मिले।
ये सारे प्रचार एक बार में हो गए तारे लड़के रोज
हम क्या कुछ बोया।
मुजफ्फरनगर में हमारे संवाददाता बीबीसी के ज़ुबैर अहमद जो है वो घूम रहे हैं इन दिनों, और इसी दौरान उनकी मुलाकात दो ऐसे किसानों से हुई जो मुजफ्फरनगर के कांड में आरोपी रहे हैं दंगों में। तो आइए अब ज़रा कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कल से दुनिया का सबसे सम्मानित ग्रैंड स्लैम कहा जाने वाला विंबलडन शुरू होने जा रहा है। इसमें सर्बिया के नोवाक जोकोविच, ब्रिटेन के एंडी मरे और महिला वर्ग में अमेरिका की सेरेना विलियम्स और स्पेन की गार्बिने मोगरुजा के अलावा महिला युगल वर्ग स्टार जोड़ी सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस पर सबकी नजर रहेंगी। एक रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार गुप्त।
दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का कल से आगाज होने जा रहा है। पिछले साल पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम करने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच का दावा इस बार भी घास के कोर्ट पर सबसे अधिक मजबूत रहेगा। पिछले दिनों उन्होंने फ्रेंच ओपन भी अपने नाम किया था और फाइनल में ब्रिटेन के एंडी मरे को रोला गैरा की लाल बजरी पर मात देकर दिखाया कि वो कहीं भी चैंपियन बन सकते हैं। पहले दौर में जोकोविच का सामना ब्रिटेन के जेम्स वार्ड से होगा। दूसरी तरफ दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे भी इन दिनों लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं। पहले दौर में उनका सामना हमवतन लियाम ब्राइडी से होगा। तीसरी वरीयता हासिल रोजर फेडरर को तो टेनिस पंडितों ने कुछ साल पहले संन्यास लेने तक की सलाह दे डाली थी, लेकिन बेहद अनुभवी फेडरर पुरानी और भरोसेमंद कार की तरह हैं। पहले दौर में उनका सामना अर्जेंटीना के ग्वाइडो पेला से होगा। चौथी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका किसी भी खिलाड़ी को हरा सकते हैं। पहले दौर में वो अमरीका के टेलर फ्रिट्स का सामना करेंगे और इसके बाद जापान के केई निशिकोरी, कनाडा के मिलोस रॉनिक, फ्रांस के रिचर्ड गेस्के और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिला एकल वर्ग में अमेरिका की सेरेना विलियम्स, स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा, पोलैंड की अग्नियस्का रद्वांस्का और जर्मनी की एंजेलिक कर्बर का दावा सबसे अधिक दमदार है। महिला युगल वर्ग में पिछली चैंपियन भारत की स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस शीर्ष वरीयता के साथ कोर्ट पर उतरेंगी, तो पुरुष युगल वर्ग में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया छठी वरीयता के साथ कुछ उलटफेर करते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाएंगे।
और खेल के समाचारों के साथ ही हमारा कार्यक्रम अब अपने अंत की ओर बढ़ चला है, तो आइए प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
जर्मन चांसलर एंगेला मेर्कल ने कहा है कि यूरोपीय संघ से अलग होने की वार्ता में ब्रिटेन के साथ कठोर व्यवहार न हो। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ब्रिटेन के फैसले पर चर्चा के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वेस्ट वर्जीनिया में बाढ़ को आपदा घोषित कर दिया है। इसमें अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं। ऊर्जा कंपनी ट्रांस कनाडा ने की स्टोन पाइपलाइन परियोजना रद्द किए जाने के कारण हुए नुकसान के बदले अमरीकी सरकार से $15 अरब का हर्जाना मांगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मशहूर फोटोग्राफर बिल कनिंघम का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 87 साल के थे। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया दिलनवाज पाशा ने और आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। नमस्कार भारत में आज इतना ही। एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर मिलेंगे। नमस्कार।